आज है 5 फरवरी दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूँ सुशीला सिंह। स्पेन में जीका वायरस के 7 मामले सामने आए, इसमें पहली गर्भवती महिला वायरस से प्रभावित। भारत में सरसों के बदले हुए आनुवांशिक गुणों वाली एक खास किस्म के बारे में आज होंगे अहम फैसले।
फर्क सिर्फ ये है कि 13 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी प्रोएग्रो ने जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाई थी, और अब की बार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड लाई जा रही है या कोशिश की जा रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट जो है उसको लेके आ रहे हैं।
महाराष्ट्र में दलित समुदाय से जुड़े नाटक को लेकर क्यों हो रहा है विवाद?
पुराने मुर्दे क्यों उखाड़े? बाबा साहब अम्बेडकर के कैरेक्टर ने उसमें बहुत बेकार डायलॉग लिखे हैं, समझो पूरे थिएटर में पत्थरबाजी की, जातीय दंगे हो गए, कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे
होगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार अमल चौधरी से। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उत्तर पूर्वी कैटालोनिया क्षेत्र में रहने वाली एक गर्भवती महिला में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। मंत्रालय ने महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उनके एक बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि ये वायरस अन्य देशों में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए स्पेन के नागरिकों को उसे देश में लाने से बचना चाहिए। बेंगलुरु में तंजानिया की एक छात्रा से बदसलूकी के बाद तंजानिया ने भारत सरकार तक कड़ा संदेश पहुंचाया है। दार ए सलाम स्थित बीबीसी संवाददाता जॉन सोलंबी के अनुसार तंजानिया सरकार ने भारत को बताया कि वो इस घटना से बेहद गुस्सा हैं। तंजानिया के विदेशी मामलों के मंत्री ऑगस्टीन माहिगा ने वहां की संसद में कहा कि नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने भारत सरकार तक हमारा संदेश पहुंचा दिया है कि इस घटना से हम बेहद गुस्सा भी हैं और निराश भी। सीरिया को अनुदान देने वाले देशों ने उसे 10 अरब डॉलर की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। लंदन में हुई इस बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनुदान सीरिया में रह रहे कई लोगों को खाना, दवाई और रहने की जगह मुहैया करा पाएगा। पड़ोसी देशों में रह रहे शरणार्थियों के लिए स्कूल जाने और नौकरी के कई अवसर भी बनेंगे। सीरिया में अलेप्पो में चल रही भीषण लड़ाई की वजह से कई हजार लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने कहा कि वो लेबनान और जॉर्डन को 20 करोड़ डॉलर दे रहे हैं जिससे वो वहां पहुंच रहे शरणार्थियों के लिए नौकरी और शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। उन्होंने कहा, अगर हम देखें तो अब तक एक साल में जॉर्डन को 2.7 अरब डॉलर और लेबनान को 1.6 अरब डॉलर की सहायता राशि दे चुके हैं। मूल रूप में ये एक स्थायी स्थिति नहीं है। जॉर्डन में जीडीपी रेशियो के मुकाबले उनको दिया हुआ कर्ज 91% बढ़ गया है, तो वहीं लेबनान के लिए ये 138% है। ऐसे में हम 20 करोड़ डॉलर की जो नई सहायता राशि दे रहे हैं वो बहुत ही रियायती दरों पर है जिससे वहां नौकरी और शिक्षा के नए अवसर खुल सकें। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम के शब्द। वहीं कैमरन ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक सीरिया को 6 अरब डॉलर की राशि दे दी जाएगी और बाकी के 5 अरब डॉलर की राशि वर्ष 2020 तक किश्तों में दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तुर्की, जॉर्डन और लेबनान जो करीब 46 लाख शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं उन्हें बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने का वादा किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले सप्ताह पेश होने वाले बजट में तेल कंपनियों पर $10 प्रति बैरल राशि वसूलने का प्रस्ताव रखेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार इससे सरकार को सालाना 32 अरब डॉलर का राजस्व मिलेगा जिसे बुनियादी ढांचे, बेहतर तकनीक के वाहनों और कम कार्बन उत्सर्जन पर शोध में खर्च किया जाएगा, लेकिन ऐसी आशंका है कि रिपब्लिकन नियंत्रित कांग्रेस में इस प्रस्ताव का पास होना मुश्किल होगा। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता लंकेश्वर घोष समेत 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्पेन से। स्पेन ने एक गर्भवती महिला के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि की है। यूरोप में किसी गर्भवती महिला का इस वायरस से प्रभावित होने का ये पहला मामला है। स्पेन में अब तक जीका वायरस के 7 मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ये महिला भी शामिल है। वहीं भारत सरकार इस वायरस के खतरे को देखते हुए इससे बचने के लिए दिशा निर्देश पहले ही जारी कर चुकी है। एक रिपोर्ट के साथ अमल चौधरी।
स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वायरस से संक्रमित महिला कुछ दिनों पहले कोलंबिया से लौटी है। माना जा रहा है कि महिला वहीं इस वायरस की चपेट में आई होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस वायरस से फैलने वाली बीमारी माइक्रोसेफेली को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित कर दिया है। AFP न्यूज एजेंसी के अनुसार संगठन ने उन लोगों से रक्तदान स्वीकार नहीं करने की सलाह भी दी है जो जीका प्रभावित क्षेत्रों से होकर आए हैं। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उत्तर पूर्वी कैटलोनिया क्षेत्र में रहने वाली इस महिला में ये वायरस पाया गया है। मंत्रालय ने महिला का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। मंत्रालय ने एक बयान में इस बात पर जोर दिया कि ये वायरस अन्य देशों में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसे स्पेन में लाने से बचना चाहिए। उनके अनुसार इस वायरस से प्रभावित कैटलोनिया, कैस्टील लियोन में दो और मूर्थिया और मैड्रिड में एक एक मरीज सामने आया है। वहीं अमरीकी देशों में इसका असर अधिक देखा जा रहा है, जिसके चलते ब्राजील की राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने कहा कि उनकी सरकार इस वायरस को फैलाने वाले मच्छर को खत्म करने में लगी हुई है। ब्राजीली कांग्रेस के संयुक्त सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए काफी धन इस्तेमाल किया जाएगा। उनके अनुसार ब्राजील और अमरीका एक साथ मिलकर इसकी वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा, हम अमरीकी सरकार के साथ एक समझौता करने जा रहे हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से इस बारे में बात हुई है। दोनों देश मिलकर जल्द से जल्द इस वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन तैयार करेंगे। ब्राजील की राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ के शब्द। दूसरी तरफ भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी इससे बचने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अंतर्गत समुदाय आधारित निगरानी, एयरपोर्ट पर इसकी जानकारी देना, रैपिड रिस्पांस टीम का गठन और यात्रा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि यह वायरस एडीस मच्छर से फैलता है, जो कि चिकनगुनिया और डेंगू का भी वाहक है और वो भारत में भी पाया जाता है। ऐसे में इससे बचाव करना जरूरी है।
स्पेन में जीका वायरस के 7 मामले सामने आए। ये थे अमल चौधरी। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी भी जारी कर चुका है कि जीका वायरस से समय पर नहीं निपटा गया तो ये इबोला वायरस जैसी महामारी का रूप धारण कर सकता है। इस जीका वायरस के बारे में और जानकारी दे रहे हैं अजय शर्मा और प्रगति सक्सेना।
जीका वायरस क्या है?
जीका वायरस का संबंध मच्छरों से है। युगांडा के जीका जंगल में वर्ष 1947 में पहली बार इस वायरस का पता चला। आमतौर पर अफ्रीका तक सीमित रहा यह वायरस ब्राजील में बीते साल मई में सामने आया और धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ता गया। लैटिन अमरीकी देशों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वायरस की चपेट में आ गया है।
जीका वायरस फैलता कैसे है?
जीका वायरस एडीज मच्छरों की वजह से फैलता है। एडीज मच्छर वहाँ पनपता है जहाँ पानी जमा होता है। वो जगह कूलर, गमला या किसी बोतल का ढक्कन भी हो सकती है। एडीज मच्छर के अलावा रक्त और यौन संबंधों के जरिए भी जीका वायरस अपना विस्तार करता है। अमेरिका के टेक्सास में यौन संक्रमण के जरिए जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है।
जीका वायरस का गर्भवती महिलाओं पर क्या असर पड़ता है?
गर्भवती महिलाओं को जीका वायरस से बचाना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीका वायरस गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डालता है। शिशु का सिर असामान्य आकार का हो जाता है और इसका सीधा असर उसके मस्तिष्क के विकास पर पड़ता है। ब्राजील में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं।
क्या भारत में जीका वायरस का कोई मामला सामने आया है?
भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि देश में जीका वायरस का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन भारत में भी एडीज मच्छर पाए जाते हैं और जानकार मानते हैं कि जीका वायरस के पनपने के लिए भारत का मौसम भी अनुकूल है। हैदराबाद की एक बायोटेक कंपनी ने जीका वायरस का टीका विकसित करने का दावा किया है, लेकिन किसी जानवर या इंसान पर इस वैक्सीन के ट्रायल में लंबा वक्त लग सकता है।
जीका वायरस से बचें कैसे?
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जीका वायरस के संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है मच्छरों की रोकथाम। संगठन का कहना है कि मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढककर रखें और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुखार, गले में खराश, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होने जैसे लक्षण नजर आने पर अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन और भरपूर आराम करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जीका वायरस का फिलहाल कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
जीका वायरस पर जानकारी दे रहे थे अजय शर्मा और प्रगति सक्सेना। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आज संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी। माना जा रहा है कि इसमें बीरगंज रक्सौल नाका खुलने पर फैसला हो सकता है। आपको याद दिला दें कि पिछले कुछ महीने पहले लागू हुए संविधान से मधेसी लोग नाराज हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके अधिकारों को इस संविधान में जगह नहीं दी गई है। सीधे चलते हैं नेपाल हमारे सहयोगी ब्रिज यादव के पास। ब्रिज, ये बताइए कि आज शीर्ष नेताओं की बैठक होगी तो आज क्या फैसला हो सकता है?
जी, ऐसा है, जो आज शीर्ष नेता की बैठक नहीं भी हो सकती है, इसलिए जो राजेंद्र महतो सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तकरीबन शाम को 4 बजे काठमांडू पहुंचेंगे और ठंड की मौसम है और नेता लोग का मानना है जो आज अगर नहीं भी हो सका तो कल होगा। और बीरगंज रक्सौल नाका जो बंद है लंबे समय से, उस पर पुनः विचार किया जा सकता है और नाका खोलने की बात राजेंद्र महतो जी ने कल बताया थे, जो हम इसको प्रस्ताव लेकर जाएंगे मीटिंग में और नाका खुलने की विषय पे कोई ठोस निर्णय होने की अनुमान किया जा रहा है।
जी, ठोस निर्णय आ सकता है। ये बताइए कि संविधान लागू होने से पहले ही बीरगंज रक्सौल नाका जो है मधेसियों ने बंद कर दिया था, इस नाके के बंद होने से जनजीवन पर किस तरह का असर पड़ा है?
जी, जनजीवन नेपाल के सबसे बड़ा नाका रक्सौल बीरगंज है, जो नेपाल में तीसरे देश से और भारत से जितने सामान आते हैं सब 80% सामान करीबन बीरगंज नाका से ही आता है और वो लंबे समय बंद होने के कारण से नेपाल में जनजीवन काफी कष्ट में है और बहुत सारे जरूरत की सामान है जो अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है सहज ढंग से। वैसे और सारे नाका सुचारू है और सारे नाका चल रहे हैं, लेकिन बीरगंज जो रक्सौल जो नाका है उससे तकरीबन जो सामान सब आता था उसको अभी रीरूट करके कुछ लाया गया है, लेकिन कुछ अभी भी वहाँ बीरगंज रक्सौल में फंसे हुए हैं।
जी, तो बीरगंज रक्सौल नाका के बंद होने से जनजीवन हुआ प्रभावित। ये थे नेपाल से ब्रिज यादव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल सरसों की एक खास किस्म सुर्खियों में है, इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड कहा जाता है। सरकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी सरसों के बदले हुए अनुवांशिक गुणों वाली एक खास किस्म के बारे में आज कुछ अहम फैसले ले सकती है। कुछ गैर सरकारी संगठन और कई किसान संगठन सरसों की इस किस्म का विरोध कर रहे हैं और इसके कथित दुष्प्रभावों को रोकने के लिए मोदी सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला और सरसों की किस तरह का बीज है, इन तमाम पहलुओं पर को समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से।
जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है ये एक नई किस्म होगी मस्टर्ड की, सरसों होती है वो है, उसके अंदर 3 जीन बाहर से डाले गए हैं, मतलब जिन्होंने ये वैरायटी बनाई है, पैदावार है सरसों की वो बढ़ जाएगी। उनका तो कहना ये भी है कि 20-25% बढ़ जाएगी और साथ में जो सरसों के तेल की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, तो ये उनके क्लेम है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड पहली बार नहीं मार्केट में लाने की कोशिश हो रही है, 13 साल पहले भी एक ऐसा ही सिमिलर एक तरीके से एक प्रो एग्रो कंपनी है वो 4 जीन डालकर एक मस्टर्ड लेकर आने की कोशिश की थी, लेकिन वो जेनेटिकल अप्रूवल कमेटी जो है GEAC उसने वो उसमें रिजेक्ट कर दी थी। तो अब ये दोबारा ये एक कोशिश की जा रही है। फर्क सिर्फ ये है कि 13 साल पहले ये एक प्राइवेट कंपनी प्रो एग्रो ने ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड बनाई थी और अब की बार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड लाई जा रही है या कोशिश की जा रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट जो है उसको लेके आ रहे हैं।
कुछ हलकों में इस तरह की खबरें हैं, विरोध के स्वर उठ रहे हैं इस खास तरह की सरसों को, जैसे कि बताया जा रहा है कि पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरह के दावे किए जा रहे हैं?
सारी दुनिया में ये माना जाता है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, स्पेशली जो फूड क्रॉप्स हैं, वो हानिकारक हैं और उससे ज्यादा चिंता की बात यह भी है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए यानी आपकी और मेरी सेहत के लिए भी वो खतरनाक साबित हो सकती हैं। और यही एक कारण है कि यूरोप में अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को हरी झंडी नहीं मिली है, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया है।
देवेंद्र शर्मा जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि भारत में सरसों के उत्पादन की मौजूदा स्थिति क्या है?
हमें बोला जा रहा है कि देश में इस समय 60,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न तेल का आयात होता है। ये इसलिए आयात होता है ये कहा जा रहा है कि भाई क्योंकि हमारे देश में पैदावार कम है, अगर हम सरसों का पैदावार बढ़ाएंगे तो उससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है 60,000 करोड़ रुपए का वो हम कम कर पाएंगे। ये सरासर झूठ है।
राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे 1984 में, तो उन्होंने 1985 के आसपास एक उन्होंने स्टेप लिया था कि हम क्यों नहीं खाद्यान्न जो तेल है वो देश में पैदा कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने एक ऑयल सी टेक्नोलॉजी मिशन का गठन किया। और 1993-94 में आपको हैरानगी होगी कि भारत जो है, जो कि अपना 50% खाद्यान्न तेल आयात करता था, भारत जो है वो 97% पैदावार अपने देश में होती थी, हम मात्र 3% इम्पोर्ट कर, और ये कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल नहीं थी उसमें। और दूसरी बात ये है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो ये कहते हैं कि इससे 20-25% पैदावार बढ़ती है, ये एक भ्रम है। आज तक कोई जीएम क्रॉप दुनिया में नहीं है जिससे पैदावार बढ़ती है।
देवेंद्र जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि आनुवांशिक तौर पर परिवर्तित बीज, जिन्हें हम जीएम बीज भी कहते हैं, इस बारे में भारत सरकार की कोई आधिकारिक नीति है? यदि है तो वो क्या है?
2010 में जयराम रमेश जी जब पर्यावरण मंत्री थे, तो उस समय जीएम बैंगन की हम बात कर रहे थे। उस टाइम पर इतना अच्छा एक प्रयास हुआ था पर्यावरण मंत्रालय की तरह कि उन्होंने देश में 7 जगह पे नेशनल कंसल्टेशन की थी, और वहां खुद जयराम रमेश हर जगह गए थे, लोगों से चर्चा हुई, लोगों के विचार जाने गए, और उसके बाद उन्होंने एक 19 पेज की रिपोर्ट पेश की थी जब उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया था अनुवंशिकी फसलों पर। वो प्रतिबंध जो है वो आज तक है, टिका हुआ है। उसके जो सवाल उठाए गए थे हमारी ही सरकार के पर्यावरण मंत्री द्वारा, वो जो चिंताएं उसमें व्यक्त की गई थी, उस किसी भी चिंता का समाधान इसमें नहीं मिलता है जो हमारी कमेटी की मीटिंग होगी।
कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से बात कर रहे थे संदीप सोनी। महाराष्ट्र में दलित समुदाय पर आधारित एक नाटक जय भीम जय भारत के मंचन से पहले महाराष्ट्र सेंसर बोर्ड ने 19 कट्स की मांग की है, पर नाटक के लेखक ने इससे इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में नाटक समेत मनोरंजन से जुड़े किसी भी कार्यक्रम के लिए राज्य स्तर के इस सेंसर बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। अनुमति के बिना मंचन नहीं किया जा सकता। बोर्ड के मुताबिक नाटक के मंचन से जातिगत हिंसा भड़कने की नौबत आ सकती है। दिव्यार्य की ये रिपोर्ट।
मराठी भाषा में लिखे गए नाटक जय भीम जय भारत के लेखक उसका एक अंश सुनाते हैं।
कि बाबा साहब बोलते हैं कि इस देश का एक देशद्रोही, हाँ, जिन्होंने आपको गोली मार के आपकी हत्या की, हाँ, उसकी अभी इधर जयंती मयंती मनाते हैं, हाँ, और ऐसे भी विचार मंत्र लोगों की अभी इधर, हाँ, अपने देश के अंदर गोली मार के हत्या की जाती है, इस बारे में आपको क्या लगता है? ये बात ये करते गांधी जी हंसते और बोलते उन्होंने मुझे गोली मार के, मतलब मुझे मारा, मगर मैं मरा ही नहीं हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसके ऊपर बाबा साहब और गांधी जी हंसते, अभी इसमें कौन सी जातीय तेज निर्माण होने वाली है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
लेखक जे जाधव के मुताबिक ये अंश उन 19 कट्स में से एक है जो महाराष्ट्र के रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल ने उन्हें नाटक से हटाने को कहे हैं। नाटक में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक काल्पनिक बातचीत होती है। इसमें कई समकालीन बातें भी उभर कर आती हैं। खैरलांजी और रामाबाई नगर में दलितों के खिलाफ हिंसा का उल्लेख भी है। कट्स में खैरलांजी की जगह वैरलांजी और रामाबाई नगर की जगह मीराबाई नगर जैसे काल्पनिक नामों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। मंडल के अध्यक्ष अरुण नालावड़े ने बीबीसी को बताया,
पुराने मुर्दे क्यों उखाड़े, जो है वो है, लेकिन उसको फिर ज्यादातर लोगों के सामने मत लाओ, अभी फिर से पुरानी यादें देंगे, किसी को क्यों छेड़े ना। और बाबा साहब अम्बेडकर के कैरेक्टर ने उसमें बहुत बेकार डायलॉग लिखे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, समझो थिएटर में पत्थरबाजी की, जातीय दंगे हो गए, कुछ भी हो सकता है ना ऐसे।
इससे पहले भी रामाबाई नगर में हुई हिंसा को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। बहुचर्चित फिल्मकार आनंद पटवर्धन की 2011 में आई फिल्म जय भीम कॉमरेड को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारत में फिल्मों के सेंसर बोर्ड ने उनकी फिल्म में कोई कट्स करने को नहीं कहे थे। ताजा विवाद पर आनंद पटवर्धन ने बीबीसी को बताया,
सच्चाई को दोहराती है ऐसी फिल्मों को सरकार, ये सरकार खास बिल्कुल नहीं चाहती कि लोगों के सामने सच्चाई आए, और ये सरकार की कायरता को दिखाता है, सरकार की बेईमानी को दिखाता है कि सरकार कोई भी आलोचना सहन नहीं कर सकती है।
रंगभूमि प्रयोग परिनिरीक्षण मंडल 1994 में बनाया गया था, और तभी से महाराष्ट्र में होने वाले हर मनोरंजन के कार्यक्रम को मंचन से पहले इससे अनुमति लेनी होती है। हर स्क्रिप्ट को देखने के बाद मंडल के पास मंचन पर पूरी रोक लगाने, कट्स की मांग करने, अडल्ट यानी वयस्कों के लिए का सर्टिफिकेट देने और बिना रोक टोक उसे पारित करने का अधिकार है। पर लेखक जे जाधव कट्स के साथ अपने नाटक का मंचन करने को तैयार नहीं।
नहीं करेंगे हम। अच्छा। उसका जो प्राण है नाटक का वो ही निकल जाता है ना, पूरा एक सेकंड जो एक्ट है वो पूरा ही पूरा कट हो जाता है, दो दो पन्ने उन्होंने काट दिए है, फिर लिंक कैसी लगेगी ना, उसमें का जो आशय है वो आशय ही निकल जाता है उसमें से, तो हम कैसे कर पाएंगे।
मंडल के अध्यक्ष अरुण नालावड़े के मुताबिक नाटक की स्क्रिप्ट बोर्ड के एक सदस्य को दी गई थी और उनकी सिफारिश के बिना पर 19 कट्स के साथ नाटक को एक दिन के मंचन की अनुमति दी गई। अब लेखक की असहमति सामने आने पर स्क्रिप्ट को 3 सदस्यों की समिति को दिया गया है जो शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। मंडल के आखिरी फैसले के बाद कलाकार के पास अदालत का रुख करने और गृह मंत्रालय से आवेदन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दिव्या आर्य, BBC, दिल्ली।
खबर सच है
अगर BBC पर है।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ, और अब समय समाचार पत्रों की समीक्षा का। अमल स्टूडियो आ चुके हैं समाचार पत्रों के साथ। अमल, आज किन खबरों को तरजीह दी है अखबारों ने?
जी सुशीला, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि, और वो दिल्ली सरकार के लिए थोड़ी मुश्किलों भरी भी कही जा सकती है, इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे को ख़त्म करने को जो दिल्ली सरकार ने जो फैसला सुनाया था उस पर रोक लगा दी है, और हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कोटा जारी रहेगा। इसमें हिंदुस्तान हिंदी लिखता है कि मैनेजमेंट कोटा जारी रहेगा, वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया का शीर्षक है कि मैनेजमेंट कोटा वापस आया, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार का इसमें दखलंदाजी करना गलत है, हालांकि फैसले के खिलाफ अपील करेगी सरकार, ऐसा अमर उजाला ने इसमें अलग से शीर्षक दिया है। इसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि वो न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन निजी स्कूलों को एडमिशन और फीस में मनमानी रोककर पारदर्शिता लाने का प्रयास उनकी जो पार्टी है वो जारी रखेगी।
ये प्रबंधन कोटा की क्या बात कर रहे हैं इसमें? ये
जो इसमें बच्चों का जो अलग से एडमिशन के लिए उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत, उन्होंने आरोप था इनकी पार्टी का कि जो निजी स्कूल हैं वो उसमें ज़्यादा पैसा वसूलते हैं मैनेजमेंट कोटे के नाम पर अभिभावकों से, तो इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब हाईकोर्ट का कहना है कि ये अभी अब जारी रहेगा। वहीं हिंदुस्तान में एक अन्य खबर है जिसके अनुसार बम की झूठी जानकारी देने पर उम्र कैद होगी। श्रोताओं को बता दूं कि मौजूदा जो कानून है उसके तहत अगर कोई इस अपराध के लिए दोषी पाया जाता है तो इसे अधिकतम 2 या 3 साल तक की जेल हो सकती है, जिसके चलते उनकी तुरंत जमानत भी मिल जाती है, लेकिन अब जो है ये कानून और कड़ा हो गया है और लोगों को अब उम्र कैद हो सकेगी। वहीं एक और बड़ी खबर है जिसमें भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई हमलों के मुख्य आरोपी हाफिज सईद पर नकेल कसें। दैनिक जागरण के अनुसार सईद ने भारत पर पठानकोट जैसे और भी हमले करने की बात कही थी, जिसके बाद भारत ने ये प्रतिक्रिया दी। वहीं नई दुनिया की खबर के अनुसार सियाचिन हिमस्खलन में फंसे 10 सैनिकों की के मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान सरदार सिंह हैं उन पर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी आरोप लग रहे थे, जिसका उन्होंने उनको नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन जो युवती उनके ऊपर आरोप लगा रही थी वो और वो सिर्फ दोनों मित्र हैं, उसके आगे उन्होंने कोई भी ऐसी बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। जी, और अन्य खबरों की बात करें तो दैनिक भास्कर में एक बहुत ही अच्छी तस्वीर छपी है कि 4 साल की उम्र में एक महिला ने दोनों पैर कैसे खोए और फिर डॉक्टर बनी और लोगों का पहाड़ों पर जाके भी वो इलाज करती हैं।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमल। और अब रुक करते हैं अमरीका का। अमरीका में चुनावी माहौल है। कल बराक ओबामा ने मस्जिद का दौरा किया, प्रत्याशी बहस चर्चाओं में अपना पक्ष रख रहे हैं, और इनकी रिपोर्टिंग कर रहे ब्रजेश उपाध्याय अपने कुछ अनुभव लेकर आए हैं इस बार की वॉशिंगटन डायरी में।
खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर पहले से ही काफी हद तक भरी हुई ट्रेन पहुंचती है। एक डब्बे में थोड़ी सी जगह है। एक हाथ में गफ्फार मार्केट से खरीदा हुआ नकली VIP सूटकेस, दूसरे में छोटी सी अपनी बच्ची की उंगलियां थामे, पीछे पीछे चांदनी चौक से खरीदी चमकीली साड़ी लपेटे और एक भारी गठरी लिए अपनी पत्नी को आंखों से धकियाते हुए आप उस डब्बे की तरफ भागते हैं। पहले से डब्बे में बैठे लोगों ने अंदर से कुंडी लगा रखी है। आप गिड़गिड़ाते हैं, घिघियाते हैं, मिन्नतें करते हैं, अरे भैया दरवाजा खोल दो, छोटी बच्ची है साथ में, जाना बहुत जरूरी है। अंदर चल रही ताश की बाजी के बीच से कोई सर उठाता है और कहता है दूसरा डब्बा देख ले। आप और घिघियाते हैं, इंसानियत का हवाला देते हैं, ट्रेन चलने को है। आखिर एक को तरस आता है, कुंडी खोल देता है। अब आप डब्बे के अंदर हैं, ट्रेन चल पड़ी है, आप एडजस्ट हो गए हैं, फैल गए हैं। थोड़ी देर में अगला स्टेशन आता है। आप जैसा ही एक और परिवार डब्बे की तरफ भाग रहा है। आप दरवाजे पर जाते हैं, कुंडी अंदर से बंद कर लेते हैं। बाहर से वो परिवार मिमिया रहा है। आप कहते हैं दूसरा डब्बा देख ले, यहां जगह नहीं है। अमरीकी चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान कई बार यहां आकर बसे अपने देशियों से या फिर अरब देशों से आए हुए लोगों से बात करता हूं तो ये पूरा सीन जो मैंने दिखाया उसकी झलक नजर आने लगती है। एक मस्जिद में जाता हूं, बहस डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों पर रोक लगाने की बात से शुरू होती है। सब एक सुर में ट्रंप को गलियाते हैं। फिर पूछता हूं, मेक्सिको से रोजी रोटी की तलाश में जो लोग यहां घुसने की कोशिश करते हैं उन्हें रोकने के लिए बड़ी सी दीवार बनाने की जो बात कर रहे हैं ट्रंप, उस बारे में क्या ख्याल है? एक साहब फौरन कहते हैं, ट्रंप की वो पॉलिसी सही है, ये लोग गलत तरीके से यहां घुसाए हैं, बहुत गंध फैला रहे हैं, अगर उन्हें ऐसे ही घुसने दिया तो अमरीका का बंटाधार हो जाएगा। मस्जिद के बाद एक और देसी साहब से मिलता हूं, काफी मेहनत के बाद उन्होंने यहां पांव जमाया है। कहते हैं, आप मीडिया वाले बेचारे को विलेन बना रहे हैं, उसके बयानों को नमक मिर्च लगाकर पेश करते हैं। वो कह रहा है कि जब तक हम समझ न लें कि अमरीकी मुसलमान आइसिस और दूसरे ऐसे आतंकवादियों के लिए क्या सोच रहा है तब तक बाहर से आने वाले और मुसलमानों पर रोक लगना चाहिए, इसमें क्या गलत है? एक तीसरे साहब मिले जो सूडान से यहां आकर बसे हैं, काफी अच्छे ओहदे पर हैं, 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं। उनकी माने तो यूरोप और अमरीका दोनों ही को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से भाग रहे मुसलमानों के लिए दरवाजा बंद कर देना चाहिए क्योंकि हल उसी से निकलेगा। कहने लगे, इस्लामी दुनिया को एक चर्निंग यानी मंथन की जरूरत है, तभी हालात बदलेंगे। लोग मरेंगे, खून खराबा होगा, लेकिन एक बेहतर समाज बनेगा, हम लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। उनका कहना था कि इन देशों से आ रहे मुसलमान यहां रह रहे मुसलमानों का नाम खराब करेंगे और उनके लिए खतरा पैदा करेंगे। मेरे दिमाग में फिर से वो भीड़ भरा प्लेटफॉर्म कौंध गया, उनका हम लोगों कहना भी डब्बे के अंदर का सीन दिखा गया। मैंने तहजीब के दायरे में रहते हुए सवाल किया, आप बरसों पहले आ गए, अगर नहीं आए होते अपने बाल बच्चों के साथ उन्हीं देशों में रह रहे होते और आज जैसी नौबत आती तब भी आप ये बात कह पाते? क्या आप उन्हें इस मंथन का हिस्सा बनने देते या फिर उनकी जान बचाने के लिए वहां से भागते? वो थोड़े से नाराज हो गए। आप इन्हें गलत मत समझिएगा, आपकी तरह ये सब बेहद अच्छे लोग हैं, अपनी मेहनत और लगन के बल पर इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और अगर आप डब्बे के अंदर घुस आए तो आपकी मदद भी करेंगे। अपने नए घर और पुरानी जड़ में से एक को चुनना कई बार उनकी मजबूरी लगती है। अपने नए घर को ही जड़ की तरह पकड़ने की कोशिश करते हैं, जलकुंभी की तरह हवाओं के रुख के साथ हो लेते हैं। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।
अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम।
ये थी ब्रजेश उपाध्याय की वॉशिंगटन डायरी। और आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर, जान लेते हैं अमल चौधरी से।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया था, जिसकी दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जेटली का आरोप है कि इन लोगों ने उन पर बिना किसी सबूत के दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जो कि सरासर गलत है। दिल्ली ऑटो एक्सपो 2016 आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 9 फरवरी तक चलने वाले इस एक्सपो में अलग अलग कंपनियों के 80 मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार इन 4 दिनों में करीब 7 लाख लोग एक्सपो में शिरकत करेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज 2 दिनों की यात्रा पर श्रीलंका के लिए रवाना होंगी। इस दौरान वो 9वें भारत श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगी, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने पर चर्चा की जाएगी। आज से दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत हो रही है। 12 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 28 सार्क देशों के 25,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में शुरू होने वाले इन खेलों का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बांग्लादेश में 24 फरवरी से शुरू होने वाली T20 प्रतियोगिता एशिया कप और उसके बाद भारत में ही 8 मार्च से आयोजित होने वाली ICC वर्ल्ड 2020 चैंपियनशिप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की आज घोषणा की जाएगी।
और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि उत्तर पूर्वी कैटालोनिया क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिला में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। बेंगलुरु में तंजानिया की एक छात्रा से बदसलूकी के बाद तंजानिया ने भारत सरकार तक कड़ा संदेश पहुंचाया है। तंजानिया के विदेश मामलों के मंत्री ऑगस्टीन माहेगा ने वहां की संसद में कहा कि नई दिल्ली स्थित हमारे दूतावास ने भारत सरकार तक हमारा संदेश पहुंचा दिया है। सीरिया को अनुदान देने वाले देशों ने उसे $10 अरब की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। लंदन में हुई इस बैठक के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने यह जानकारी दी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले सप्ताह पेश होने वाले बजट में तेल कंपनियों पर $10 प्रति बैरल राशि वसूलने का प्रस्ताव रखेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार इससे सरकार को सालाना $32 अरब का राजस्व मिलेगा। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले की अदालत ने एक महिला की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता लंकेश्वर घोष समेत 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे अमल चौधरी। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।